एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं विस्फोटक विषय पर बात करने वाले हैं।
हाँ, विस्फोटक भी और कहीं ना कहीं बनाने वाला भी। आज हम बात कर रहे हैं और ग्रौर की किताब सुपरनोवा के बारे में।
और ये सिर्फ तारों के मरने या बड़े धमाकों की कहानी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये कहानी है कि ब्रह्मांड खुद को कैसे बनाता है, जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं, तत्व हैं, वो कैसे बनते हैं।
हाँ, और असल में हम सब यहाँ कैसे हैं उसकी कहानी।
और ये सोचना कि ये सब हमसे बहुत दूर हो रहा है, वो ठीक नहीं है।
सही बात है। सुपरनोवा का हमसे सीधा कनेक्शन है। यही वो, कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय भट्टियां हैं जो भारी तत्व बनाती हैं।
ग्रहों के लिए और यहां तक कि हमारे शरीर के लिए भी।
और कमाल की बात तो यह है कि इनकी मदद से हम ब्रह्मांड के फैलने को नापते हैं।
हाँ, और वो डार्क एनर्जी वाली जो पहेली है,
बिल्कुल, उसे समझने की कोशिश करते हैं।
तो ये जानना कि हम कहाँ से आए, ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, ये तो हमेशा से इंसान जानना चाहता है। और आज हमारे गाइड हैं और ग्रौर। तो पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें।
हाँ जरूर। और ग्रौर जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में काफी जाने माने हैं। यूके में पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं
और न्यूयॉर्क के अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री से भी जुड़े रहे हैं।
पीएचडी है एस्ट्रोफिजिक्स में।
और उनकी जो स्पेशलिटी है वो सीधे सीधे सुपरनोवा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग,
मतलब गुरुत्वाकर्षण से रोशनी का मुड़ना।
हाँ, और इसी तरह की जो क्षणिक घटनाएं होती हैं आसमान में, उन पर है। 10 साल से ज्यादा का रिसर्च है उनका इस फील्ड में।
और वो इन घटनाओं को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं
सही कहा।
ये समझने के लिए कि ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है, या डार्क एनर्जी क्या चीज है, या तारों का जीवन कैसे चलता है।
और वो वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी के बड़े सर्वे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी रहे हैं, मतलब लेटेस्ट जानकारी उनके पास।
हाँ बिल्कुल, ताज़ा जानकारी। और सबसे अच्छी बात, वो मुश्किल चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। एक अच्छे साइंस कम्युनिकेटर हैं।
हाँ, और MIT प्रेस की जो एसेंशियल नॉलेज सीरीज है, उसके लेखक के तौर पर उनका मकसद भी यही है, सुपरनोवा के विज्ञान को आसान बनाना और उनका महत्व बताना। तो अब आते हैं किताब पर, इसका मेन आइडिया क्या है?
देखिए, किताब का मकसद है सुपरनोवा की पूरी कहानी बताना। वो क्या है, क्यों होते हैं, और सबसे जरूरी, वो हमारे लिए, इस ब्रह्मांड के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं।
और ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा भी सोचना पसंद करता है, स्टूडेंट्स हों, साइंस लवर हों,
या बस जिनके मन में सवाल उठते हों।
और लिखने का तरीका भी काफी अच्छा है, कोई मुश्किल गणित नहीं, डराने वाले शब्द नहीं।
हाँ, आसान उदाहरण है, इतिहास के किस्से हैं, एक लॉजिकल फ्लो है। सिर्फ क्या नहीं, बल्कि कैसे पता चला और क्यों, ये जानना जरूरी है। इस पर भी जोर है।
बिल्कुल। और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि सुपरनोवा सिर्फ तबाही नहीं मचाते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो असल में ब्रह्मांड के निर्माण, उसके बदलाव और हमारी समझ के लिए, कह सकते हैं, फंडामेंटल इंजन है।
हाँ, ये शब्द अच्छा है, इंजन। यही वो तरीका है जिससे भारी तत्व बनते हैं और फैलते हैं।
बिल्कुल, ग्रहों के लिए, तारों के लिए और हमारे जैसे जीवन के लिए भी, ये एक तरह की कॉस्मिक रिसाइकलिंग है।
ये उन बड़े सवालों के जवाब देती हैं जो हम सोचते हैं, जीवन के तत्व कहाँ से आए,
या फिर हम कैसे जानते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, या इसका भविष्य क्या होगा।
और सुपरनोवा इन सब के केंद्र में है, वो एस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, यहाँ तक कि बायोलॉजी को भी जोड़ते हैं।
किताब हमें एक सफर पर ले जाती है। शुरुआत होती है उन पुराने जमाने के मेहमान तारों से,
हजारों साल पहले जो देखे गए थे चीन में और दूसरी जगहों पर।
हाँ, जिन्होंने ये धारणा तोड़ी कि आसमान हमेशा एक जैसा रहता है। फिर आता है मॉडर्न जमाना, सुपरनोवा का क्लासिफिकेशन, टेलीस्कोप,
और वो मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी वाली बात।
बिल्कुल, सिर्फ रोशनी नहीं, न्यूट्रिनो, गुरुत्वाकर्षण तरंगे, सब कुछ देखना।
फिर किताब समझाती है कि ये धमाके होते कैसे हैं।
मोटे तौर पर दो तरीके हैं।
हाँ, एक है कोर कोलैप्स, जब कोई बहुत भारी तारा अपने अंदर ढह जाता है,
और दूसरा
है थर्मोन्यूक्लियर डेटोनेशन, जब एक खास तरह का छोटा घना तारा, व्हाइट ड्वार्फ, वो फट जाता है।
और इन धमाकों का नतीजा
भारी तत्व बनते हैं।
हाँ, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, यहाँ तक कि सोना, चांदी भी, और ये सब फैल जाते हैं अंतरिक्ष में।
और अगली पीढ़ी के तारे और ग्रह इनसे बनते हैं। मतलब एक की मौत दूसरे का जन्म।
सही कहा। और बड़े स्केल पर देखें तो एक खास टाइप का सुपरनोवा है, टाइप 1i।
हाँ, उनकी चमक लगभग एक जैसी होती है।
बिल्कुल, इसलिए उन्हें कहते हैं स्पैंडर्ड कैंडल्स, जैसे 100 वाट का बल्ब,
और उससे दूरी नाप सकते हैं।
हाँ, और इसी से वो बड़ी खोज हुई डार्क एनर्जी वाली। पता चला कि ब्रह्मांड का फैलाव तेज हो रहा है।
कमाल है, किताब भविष्य की भी बात करती है कि आगे क्या पता चलेगा। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, तारों की जिंदगी और मौत से शुरू करते हैं।
ठीक है, तो तारे हैं क्या असल में? ये गैस के बहुत बड़े गोले हैं
जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं,
और उनके कोर में, केंद्र में, इतनी गर्मी और दबाव है कि एटम आपस में जुड़ते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन,
और इसी से ऊर्जा निकलती है जो बाहर की तरफ धक्का देती है और गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करती है, ताला चमकता है।
हाँ, एक तरह का बैलेंस है ये। अब तारे का अंत कैसा होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि उसका वजन कितना है शुरू में,
मतलब मास कितना है।
हाँ, मास। जो तारे सूरज से कोई 8 गुना या ज्यादा भारी होते हैं,
वो अपना ईंधन बहुत तेजी से खर्च करते हैं।
बिल्कुल, उनकी लाइफ शानदार होती है लेकिन छोटी, और उनका अंत होता है सुपरनोवा में।
ये बड़े तारे अपने कोर में फ्यूजन से हल्के तत्वों को भारी में बदलते जाते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन,
हाँ, सिलिकॉन, और आखिर में लोहा।
लेकिन लोहे के साथ दिक्कत यह है कि उसके फ्यूजन से ऊर्जा निकलती नहीं, लगती है।
सही, तो कोर में ऊर्जा बनना बंद, अब क्या होगा?
अब गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाएगा।
हाँ, तारे का जो लोहे का कोर है वो अपने ही वजन से भयानक तेजी से सिकुड़ता है, कोलैप्स कर जाता है
कुछ ही सेकंड्स में,
और फिर वो इतना सिकुड़ जाता है कि मानो वो वापस उछलता है एक शॉक वेव के साथ,
एक जबरदस्त धक्का।
हाँ, और यही शॉक वेव तारे की बाहरी परतों को फाड़कर अंतरिक्ष में बिखेर देती है। यही है कोर कोलैप्स सुपरनोवा।
अच्छा,
अब ये जो धमाके होते हैं, इनको अलग अलग टाइप में कैसे बांटा जाता है?
एक तरीका है उनका स्पेक्ट्रम देखना, मतलब उनसे जो रोशनी आ रही है उसे उसके रंगों में तोड़कर देखना,
जैसे प्रिज्म से होता है। हाँ, कुछ वैसा ही, हर एलिमेंट, हर तत्व उस स्पेक्ट्रम में अपनी एक खास लाइन या निशान छोड़ता है,
फिंगरप्रिंट जैसा।
बिल्कुल, तो अगर हाइड्रोजन की लाइनें दिखती हैं तो उसे टाइप आई कहते हैं,
और अगर हाइड्रोजन नहीं है
तो वो टाइप आई है। फिर टाइप आई को भी आगे बांटा जाता है, IA, IB, IC, ये देख करके सिलिकॉन है या हीलियम है या नहीं।
अच्छा, और एक लाइट कर्व भी होता है।
हाँ, लाइट कर्व मतलब समय के साथ सुपरनोवा की चमक कैसे बदलती है, तेज होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है, हर टाइप का पैटर्न थोड़ा अलग होता है।
तो ये जो कोर कोलैप्स वाले सुपरनोवा थे वो कौन से टाइप के हुए?
वो होते हैं टाइप आई, टाइप IB और टाइप IC। इन सब में एक भारी तारे का कोर ढहता है,
और धमाके के बाद क्या बचता है?
या तो एक न्यूट्रॉन स्टार, बहुत ही घना, शहर जितना बड़ा लेकिन सूरज से भारी,
या फिर ब्लैक होल।
हाँ, अगर तारा बहुत ही ज्यादा भारी था तो ब्लैक होल, और इस सब में न्यूट्रिनो नाम के कणों का बहुत बड़ा रोल होता है।
वो 1987 वाले सुपरनोवा से कंफर्म हुआ था, है ना?
हाँ, SN 1987A, उससे निकले न्यूट्रिनो पृथ्वी पर डिटेक्ट हुए थे।
अच्छा, और दूसरा टाइप था टाइप IA, उसकी कहानी अलग है।
हाँ, वो थोड़ी अलग है, वो तब होता है जब एक वाइट ड्वार्फ तारा,
यानी जो सूरज जैसे तारे का बचा हुआ कोर होता है,
बिल्कुल, वो किसी दूसरे तारे के साथ एक जोड़े में हो, बाइनरी सिस्टम में।
हाँ,
और वो अपने साथी तारे से गैस खींचता है।
हाँ, धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता जाता है, और जब वो एक खास लिमिट तक पहुंच जाता है,
चंद्रशेखर लिमिट।
हाँ, चंद्रशेखर लिमिट, जो करीब 1.4 सोलर मास होती है,
तब उसके अंदर अचानक से कार्बन फ्यूजन शुरू हो जाता है,
अनकंट्रोल्ड,
और पूरा तारा फट जाता है।
हाँ, एक थर्मोन्यूक्लियर धमाके में, इसमें कोई न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल नहीं बचता।
और इनकी खास बात, वो स्टैंडर्ड कैंडल वाली थी।
बिल्कुल, क्योंकि ये हमेशा एक ही लिमिट पर फटते हैं, तो इनकी चमक लगभग एक जैसी होती है, इसीलिए ये दूरी नापने के लिए इतने काम के हैं, ब्रह्मांड के मील के पत्थर। किताब में इतिहास का भी जिक्र है।
हाँ बिल्कुल, जैसे 1054 ईस्वी में चीन में खगोलविदों ने एक नया तारा देखा था आसमान में,
दिन में भी दिखने वाला।
हाँ, वो असल में एक सुपरनोवा था। आज हम उसके बचे हुए हिस्से को क्रैब नेब्यूला कहते हैं।
फिर यूरोप में टाइको ब्राहे ने 1572 में, केपलर ने 1604 में देखा,
और उस जमाने में तो ये माना जाता था कि आसमान बदलता ही नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है।
तो इन नए तारों ने उस सोच को चुनौती दी।
हाँ, ये दिखाया कि ब्रह्मांड बदलता है, ये बड़ी बात थी उस समय।
फिर 20वीं सदी में फ्रिट्ज़ ज़्विकी आए, उन्होंने सुपरनोवा शब्द दिया।
और ये थ्योरी भी दी कि ये भारी तारों के ढहने से बनते हैं और पीछे न्यूट्रॉन तारे छोड़ते हैं। ये तब सिर्फ एक आइडिया था।
आज तो हमारे पास बहुत ताकतवर टेलीस्कोप हैं, जमीन पर भी अंतरिक्ष में भी, हबल, जेम्स वेब।
हाँ, और हम ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी करते हैं, मतलब आसमान में जो चीजें तेजी से बदलती हैं उन पर नजर रखते हैं। सुपरनोवा तो कुछ ही हफ्तों में धुंधले हो जाते हैं।
ऑटोमेटिक सर्वे पूरी रात आसमान को देखते रहते हैं
और जैसे ही कुछ नया चमकता दिखता है अलर्ट आ जाता है।
और अब तो हम मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी भी कर रहे हैं,
मतलब सिर्फ लाइट नहीं, न्यूट्रीनो भी, गुरुत्वाकर्षण तरंगे भी, अगर उस घटना से निकल रही हों तो।
जैसे किसी चीज को सिर्फ देखना नहीं, सुनना और महसूस भी करना।
हाँ, उससे पूरी तस्वीर मिलती है, धमाके के अंदर क्या हो रहा है उसकी बेहतर समझ मिलती है।
और धमाके के बाद जो गैस और धूल का बादल फैलता है,
हाँ,
उसे सुपरनोवा रेमनेंट कहते हैं।
हाँ, जैसे क्रैब नेब्यूला टाइप आईए में कोई सेंट्रल चीज नहीं बचती लेकिन फैरती हुई गैस तो होती है। ये रेमनेंट एक तरह की लैब है
जहां एक्सट्रीम फिजिक्स पढ़ सकते हैं।
लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो शायद सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है हमसे, ये ब्रह्मांडीय निर्माण वाली बात, न्यूक्लियोसिंथेसिस। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। देखो, बिग बैंग में तो सिर्फ सबसे हल्के तत्व बने थे, हाइड्रोजन, हीलियम, थोड़ा सा लिट्रियम,
और तारों के अंदर फ्यूजन से लोहे तक के बन गए।
बिल्कुल, लेकिन सोना, चांदी, यूरेनियम, ये भारी वाले कहाँ से आए?
इसका जवाब है सुपरनोवा।
हाँ, खासकर कोर कोलैप्स सुपरनोवा में, या जब दो न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं जो खुद सुपरनोवा से ही बने थे।
तो उस धमाके में इतनी एनर्जी, इतना प्रेशर, इतने न्यूट्रॉन्स होते हैं कि लोहे से भारी तत्व बन जाते हैं।
ये कमाल की बात है।
और फिर ये सारे तत्व, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना, सब कुछ
धमाके के साथ अंतरिक्ष में फैल जाते हैं।
हाँ, अरबों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
और ये उन गैस और धूल के बादलों में मिल जाते हैं जिनसे फिर नए तारे और ग्रह बनते हैं।
हमारा सोलर सिस्टम भी ऐसे ही बना।
बिल्कुल, करीब 4.5 अरब साल पहले।
इसे कहते हैं कॉस्मिक एनरिचमेंट।
तो इसका मतलब हम सब,
हाँ, हम सब सचमुच तारों की धूल हैं, या कहो सुपरनोवा की धूल। हमारे शरीर का कैल्शियम, खून का लोहा, कार्बन,
ऑक्सीजन,
ये सब कभी किसी तारे के अंदर या उसके धमाके में बने थे।
ये सोचना ही, मतलब
हाँ, एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है ना? कार्ल सेगन ने कहा था, वी आर स्टार स्टफ,
या कहें हम सुपरनोवा स्टफ हैं।
बिल्कुल, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
यकीनन।
अच्छा, सुपरनोवा का एक और बड़ा काम है ब्रह्मांड को नापना और उसके रहस्य खोलना।
टाइप आए वाले फिर से?
हाँ, वो स्टैंडर्ड कैंडल वाली बात, हमें पता है वो असल में कितने चमकीले होते हैं।
तो हम देख सकते हैं कि वो यहाँ से कितने धुंधले दिख रहे हैं,
और उससे दूरी का पता चल जाता है, दूर की गैलेक्सीज तक की दूरी।
और 1990 के दशक में दो टीमों ने इसी तरीके से दूर के टाइप आईएस सुपरनोवा को स्टडी किया।
हाँ, एक टीम के लीडर थे सॉल पर्लमिटर, दूसरी के ब्रायन श्मिट और एडम रीस। वो देखना चाह रहे थे कि ग्रेविटी के वजह से ब्रह्मांड का फैलाव कितना धीमा हो रहा है।
लेकिन नतीजा उल्टा निकला। हाँ, बिल्कुल हैरान करने वाला। दूर के सुपरनोवा उम्मीद से ज्यादा धुंधले थे,
जिसका मतलब था कि वो और भी ज्यादा दूर हैं, यानी ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं, तेज हो रहा है,
एक्सेलरेट कर रहा है। ये बहुत बड़ी खोज थी,
और इसी से पता चला कि कोई अनजान एनर्जी है, डार्क एनर्जी, जो ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रही है।
हाँ, और चीजों को दूर धकेल रही है। ये आज भी एक बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन इसका पहला सबूत सुपरनोवा से मिला,
और इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला 2011 में।
हाँ, पर्लमटर, श्मिट और रीस को। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कुछ मेन थीम्स निकलती हैं इस किताब से। पहला तो ये कि सुपरनोवा अंत नहीं, शुरुआत है।
विनाश नहीं, निर्माण के इंजन।
बिल्कुल, भारी तत्व बनाते हैं, फैलाते हैं, नए जीवन की नींव रखते हैं।
दूसरा, ये ब्रह्मांड के रूलर हैं, स्केल हैं। टाइप आईए सुपरनोवा से हमने दूरी नापी, डार्क एनर्जी खोजी।
हाँ, इन्होंने कॉस्मोलॉजी में क्रांति ला दी। तीसरा, ये दिखाते हैं कि सब कुछ कैसे जुड़ा है, फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस,
परमाणु, क्वांटम, रिलेटिविटी, सब मिलकर सुपरनोवा को समझाते हैं।
और ये तारों, गैलेक्सीज और पूरे यूनिवर्स के बीच का कनेक्शन दिखाते हैं।
चौथा, हमारी अपनी कॉस्मिक हेरिटेज, हम इन्हीं विस्फोटों से बने हैं,
ये हमें यूनिवर्स से जोड़ता है। और पांचवा,
ये विज्ञान की यात्रा को दिखाता है, कैसे सदियों के ऑब्जर्वेशन, नए आइडिया, टेक्नोलॉजी, इनसे हमारी समझ बढ़ती है।
हाँ, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है।
किताब में कुछ बातें हैं जो याद रह जाती हैं, जैसे वो कि हम सब सुपरनोवा की धूल हैं।
हाँ, हमारे शरीर का हर भारी परमाणु एक मरते तारे में बना और उसके विस्फोट से हम तक पहुंचा। ये कितना पावरफुल है।
और वो सादगी से समझाया गया कि तारा चमकता क्यों है और फटता क्यों है, वो बैलेंस वाली बात।
तारे का जीवन गुरुत्वाकर्षण और परमाणु संलयन के बीच एक नाजुक संतुलन है। सुपरनोवा तब होता है जब ये संतुलन टूट जाता है। बहुत अच्छा समझाया है।
और टाइप आईए के बारे में कि वो कैसे स्टैंडर्ड कैंडल बने और डार्क एनर्जी की खोज हुई।
इन ब्रह्मांडीय दीप स्तंभों की रोशनी से हम ब्रह्मांड की दूरी मापते हैं और इसी प्रक्रिया में हमने उसके सबसे गहरे रहस्य डार्क एनर्जी को खोजा। ये सही टूल होने के महत्व को दिखाता है।
और आखिर में वो विचार कि सुपरनोवा मौत नहीं बदलाव है।
हाँ, यह एक तारे को बिखरे हुए तत्वों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीज में बदल देता है। नए सितारों, ग्रहों और जीवन की संभावना, ये अंत में शुरुआत देखने जैसा है।
तो अब सवाल यह है कि ये सब जानने से हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? कोई प्रैक्टिकल यूज है इसका?
देखिए, शायद सीधे सीधे कोई ऐप या मशीन ना बने इससे, लेकिन हमारे सोचने के तरीके पर असर जरूर पड़ता है।
कैसे?
जब हम ब्रह्मांड की विशालता और उसमें अपनी जगह के बारे में सोचते हैं तो थोड़ी विनम्रता आती है। ये जानना कि हमारे खून का लोहा किसी तारे के धमाके में बना था, ये हमारी रोज की टेंशन को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करता है।
ये बात तो है। और शायद साइंस की खबरें भी बेहतर समझ आती हैं, जेम्स वेब की तस्वीरें या ग्रेविटेशनल वेव्स।
बिल्कुल, सुपरनोवा के बारे में जानने के बाद ये सब समझना आसान हो जाता है। हम साइंस के प्रोसेस की कदर करना सीखते हैं, कैसे आइडिया बनते हैं, टेस्ट होते हैं, बदलते हैं।
और ये भी सीखते हैं कि साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ अनसुलझा रहता है।
हाँ, जैसे डार्क एनर्जी क्या है या कोर कोलैप्स का एकदम सही तरीका क्या है, यही रहस्य तो साइंस को आगे बढ़ाते हैं और ये हमें सिखाते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते।
शायद थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना भी सिखाता है, अरबों साल के स्केल पर।
हो सकता है, जब हम इतने बड़े टाइम स्केल के बारे में सोचते हैं तो शायद अपने जीवन, अपने पर्यावरण, अपने समाज के बारे में भी थोड़ा लंबा सोचने लगे।
तो अंत में आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही इस किताब से?
मेरे लिए शायद यही कि कैसे यूनिवर्स की सबसे विनाशकारी दिखने वाली चीजें ही असल में जीवन के लिए सबसे जरूरी हैं। ये जो विरोधाभास है, ये कमाल का है।
और मेरे लिए शायद वो डार्क एनर्जी वाली खोज, कैसे वैज्ञानिक कुछ और ढूंढ रहे थे और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। ये साइंस की अनप्रिडिक्टेबल नेचर को दिखाता है।
तो सुनने वालों के लिए हमारा आखिरी विचार, अगली बार जब रात में तारे देखें तो सोचिएगा, उनमें से कुछ शायद कभी सुपरनोवा बनेंगे और उनके तत्व अरबों साल बाद शायद कहीं और जीवन शुरू करेंगे। ये कॉस्मिक साइकिल कितना बड़ा और लगातार चलने वाला है ना।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।